स्पेशल लेक्चर बाय हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज 1 September 2015.
हरे कृष्णा सब ठीक हो? हरे कृष्ण। अब चाहते आपका मंदिर जल्दी खुले, सब चाहते हो?
Thank you.
हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। आप सब यहाँ हो पास में क्योंकि आप सबकी आध्यात्मिकता में रुचि है, तो समय का भाव है आज, क्योंकि मुझे भी जू जाना है। एक श्लोक पढ़कर सुनाएंगे 10वें स्कंद का। और हाँ, आज ये साल जो है इसका भक्तों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण साल है। किसे पता है क्यों? एक तो आपका मंदिर खुलने वाला है, इतिहास में लिखा जाएगा कि 2015 सितंबर में राधा गिरधारी मंदिर का उद्घाटन हुआ। दूसरा, क्योंकि 50 साल पूर्व प्रभुपाद निकले थे कहा, भारत से अमेरिका के लिए। तो संक्षेप में इन विषयों की चर्चा करेंगे। तो पहले आपको एक श्लोक पढ़कर सुनाएंगे, रीडिंग इन हिंदी। समय बचाने के लिए संस्कृत के श्लोक का उच्चारण नहीं करेंगे, जस्ट डू अनुवाद एंड तात्पर्य क्विकली। यहां से सुनिए श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के पहले अध्याय का 15वां श्लोक है।
अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजर्षियों में श्रेष्ठ, क्योंकि आप वासुदेव की कथाओं के प्रति अत्यधिक आकृष्ट हैं, अतः निश्चित रूप से आपकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर है, जो मानवता का एकमात्र असली लक्ष्य है। क्योंकि यह आकर्षण अनवरत रहता है, अतएव निश्चित रूप से उत्कृष्ट है। तात्पर्य, राजर्षि अर्थात प्रमुख प्रशासक के लिए कृष्ण कथा अनिवार्य है। भगवद गीता में भी यही कहा गया है, इमं राजर्षियो विदुः। किंतु दुर्भाग्यवश इस युग में सरकारी शक्ति धीरे धीरे ऐसे निकृष्ट लोगों के हाथ में जा रही है जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, इसीलिए समाज का तेजी से पतन हो रहा है। सरकार के प्रशासकों को कृष्ण कथा समझनी चाहिए, अन्यथा प्रजा कैसे सुखी हो सकती है और किस तरह उसे भौतिकवादी जीवन के कष्टों से छुटकारा मिल सकता है। जिसका मन कृष्ण भावना में इतने स्थिर हो चुका हो, समझिए कि जीवन मूल्यों के विषय में उसे प्रखर बुद्धि प्राप्त है। महाराज परीक्षित राजर्षि सतम अर्थात समस्त राजर्षियों में श्रेष्ठ थे और सुखदेव गोस्वामी मुनि सतम थे अर्थात सारे मुनियों में श्रेष्ठ थे। दोनों ही कृष्ण कथा में एक सी रुचि के कारण उच्च पद को प्राप्त थे। अगले श्लोक में वक्ता तथा श्रोता के उच्च पद की बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। कृष्ण कथा इतनी उत्साहदायक है कि महाराज परीक्षित समस्त भौतिक बातों को यहाँ तक कि खाने पीने संबंधी निजी सुविधाओं को भी भूल गए। यह इसका प्रमाण है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन को सारे विश्व में वक्ता तथा श्रोता दोनों को एक समान दिव्य स्तर पर लाने तथा भगवत धाम ले जाने के लिए इस तरह फैल जाना चाहिए।
ओम ज्ञान जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध में अब भगवान की लीलाओं के विषय में पढ़ते हो। पहले सुखदेव गोस्वामी ने भगवान की बाल लीला का वर्णन किया है, उसके पश्चात आगे वो रासलीला का वर्णन करते हैं। ये नहीं, पहले रासलीला। अगर कोई व्यक्ति पहले 9 स्कंधों को पढ़ेगा तो और बाल लीला भगवान की सुनेगा तो उसके मन में कोई शंका नहीं रहेगी कि परम भगवान कौन है। तो इस अध्याय में कुछ लोग पहले परीक्षित महाराज ने कहा, मैं पानी नहीं पी रहा, कुछ खा रहा नहीं। जैसे आप जानते हो परीक्षित महाराज जंगल में थे, प्यास से पानी की खोज में थे। उन्होंने देखा एक कुटिया जिसमें थोड़ी सी रोशनी निकल रही थी। उन्होंने सोचा इस स्थान में पानी मिल जाएगा। कि वो उस कुटिया में पहुंचे तो देखा वहां एक संत बैठा है जो भगवान के चिंतन में जुड़ा हुआ था। वो राजा थे, राज ऋषि, राजा भी और ऋषि भी, तो उनका स्वागत होना चाहिए था। वही संत ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, जैसे ये कोई साधारण सड़क के आदमी थे। तो राजा ने अपमान महसूस किया। राजा निकले कुटिया से, आगे उन्होंने देखा एक मरा हुआ सांप, तो गुस्से में उस सांप को हार के रूप में चढ़ा दिया। किस पर? उस संत पर। उस संत का बेटा श्रृंगी बाहर खेल रहा था दूसरे बच्चों के साथ। जब उसने देखा कि राजा उसके पिता को मिलकर तो राजा ने देखा जब ठीक है ना, आपको सुनाई दे रहा है सबको। जब उस संत के बेटे ने देखा राजा कुटिया से निकलकर जा रहा है, उसने उसमें जरा जिज्ञासा हुई, मैं पिता से जाके पूछता हूँ राजा ने क्या चर्चा की उनके साथ। तो जब वह पिता के पास पहुंचा तो उसने देखा मरा हुआ सांप हार के रूप में पिता के गले में। बेटा पहचान गया ये राजा का, राजा इसका कारण है। तो बेटे ने जाकर पूछा आप थे इसका कारण क्या? तो मैंने कहा हाँ। तुम्हारी ये हिम्मत तुम राजा हो तो अपने आप को क्या समझते हो, तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि 7 दिन के पश्चात तुम्हारा अंत आ जाएगा। वैसे तो जब साधारण व्यक्ति को सूचना मिलती है 7 दिन क्या 7 साल बाद अंत आ जाएगा, हम घबरा जाते हैं। तो परीक्षित महाराज घबराए नहीं, उन्होंने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है शरीर त्यागने का, तो उन्होंने पाक पीना खाना सब बंद कर दिया और बड़े ध्यान से शुक्रदेव गोस्वामी का उच्चारण सुन रहे थे। जब उन्हें यह सूचना मिली कि केवल 7 दिन बच गए उनके जीवन में, तो उन्होंने उस समय के उपस्थित संतों को निमंत्रण दिया और संतों से पूछा, क्या पूछा, जिस व्यक्ति का अंत आने वाला है उसे क्या करना चाहिए। तो आप सब का अंत आएगा या नहीं आएगा, कि मीरा रोड में डिस्काउंट है आपके इलाके का नाम ही मीरा रोड है, यहाँ तो सबको भगवान कृष्ण का भक्त होना चाहिए मीरा भाई जैसे। तो ये सूचना तो नहीं है हमारे पास। तो शुक्रदेव गोस्वामी जो व्यासदेव के पुत्र थे उस सभा में उपस्थित थे, उन्होंने कहा आपको कृष्णा संबंधित कथा सुननी चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने पिछले श्लोक में कहा है कि हालांकि मैं कुछ खा रहा नहीं हूं, कुछ पी रहा नहीं हूं, मुझे आपके दिव्य वाणी के द्वारा जो संदेश मिल रहा है ये अमृत पीकर मेरा पेट भी भर गया और प्यास भी बुझ गई। क्या सुनकर, कृष्ण कथा सुनकर। तो हम भक्तों को कृष्ण कथा में रुचि बढ़ानी चाहिए। भागवत में कहा गया है जब कृष्ण कथा की चर्चा हो तो इसमें सबका लाभ है, जो उपदेश दे रहा है उसका लाभ है, जो प्रश्न पूछ रहा है उसका लाभ है, और जो प्रजा है उनका भी लाभ है। तो हम भक्तों को कृष्ण कथा में रुचि बढ़ानी चाहिए। जैसे कि कुछ दिन पहले आप भक्तों ने बालराम जयंती मनाई, उस दिन हमने हमारे नए कुरुक्षेत्र भूमि में जो कृष्ण अर्जुन मंदिर बनने जा रहा है उसकी आधारशिला का कार्यक्रम किया था। तो प्रभुपाद जी गए थे कुरुक्षेत्र धाम में जहाँ गीता का उपदेश भगवान ने दिया था ज्योतिषर में 1975 नवंबर में, मैं गया था प्रभुपाद के साथ। प्रभुपाद जी ने एक इच्छा प्रकट की थी कि इस ज्योतिषर स्थान में जहाँ की भगवान ने गीता का उपदेश दिया एक कृष्ण अर्जुन मंदिर होना चाहिए। तो जमीन प्राप्त हो गई थी, फिर किसी लफड़ा किया 20 साल केस चला, तो अभी नई जमीन सरकार से प्राप्त हुई है जिसमें कोई लफड़ा नहीं है और भूमि पूजा भी हो गई, अभी आधारशिला भी हो गई, तो वहां मंदिर बनाने जा रहे हैं। तो कुछ दिन पहले आपने बालराम जयंती मनाई थी, बालराम जयंती का अर्थ क्या, बालराम जी का जन्मदिन। और आप लोग गुजराती में बालराम जी को क्या बोलते, दाऊ जी, दाऊ जी बड़ा भाई। तो बालराम जी की भी अनेक लीलाएं हैं। एक दिन बालराम ने भगवान कृष्ण से कहा मैं कृष्णा बन सकता हूं एक दिन के लिए। भगवान में और बालराम में अंतर क्या है, बालराम ऐसे हैं तो बड़े भाई, कभी छोटे भाई के रूप में प्रकट होते हैं कभी बड़े भाई के रूप में। जैसे जब भगवान राम पृथ्वी पर आए थे तो जब वो प्रकट हुए थे छोटे भाई के रूप में, किस रूप में, लक्ष्मण के रूप में, और लक्ष्मण के रूप में उन्होंने राम जी को अकेले नहीं छोड़ा, राम वनवास में जा रहे थे, है ना, लक्ष्मण के जाने की आवश्यकता नहीं थी, लक्ष्मण के मन में एक ही भाव था राम जी की सुरक्षा, हो गए। और जब भगवान प्रकट हुए थे कृष्णा के रूप में तो प्रकट हुए किस रूप में? बलराम के रूप में। और बलराम के रूप में या दाऊदी के रूप में उनके मन में सदा एक ही भाव था, कृष्णा की सुरक्षा, और कोई भाव नहीं। तो एक समय भगवान की लीला में, बलराम की लीला में आप पढ़ते हो कि बलराम ने कृष्णा से पूछा, मुझे एक दिन के लिए कृष्णा बनने दो। और कृष्ण भगवान बलराम में क्या अंतर है? एक तो भगवान के पास एक मोर है और एक है बांसुरी, और बलराम के पास क्या रहता है? हल और गदा। तो एक दिन के लिए भगवान बलराम ने मोहर भी पहन लिया पगड़ी में और बंसी बजाना भी शुरू किया। और कम से आप जानते हो असुरों को भेजते रहते थे कृष्णा का वध करने के लिए, तो एक केशी घोड़ा भेज रहे थे कंस मथुरा में कृष्णा को मारने के लिए। तो उस केशी ने पूछा मैं कैसे पहचानूंगा कृष्णा को, वहां तो इतने ग्वाले हैं। तो कंस ने कहा एक ही ग्वाला होगा जिसके पास मोर भी है पीकॉक फेदर और बंसी भी, और कोई नहीं है जिसके पास है। तो जब वो राक्षस आया मथुरा में तो वहां उसे देखा बलराम को, बलराम को देखा वो समझा ये कृष्णा है, क्योंकि कंस ने कहा था एक मोर होगा और एक बंसी होगी। गधे ने वो जोर से पाव मारा, इतनी जोर से कि बलराम हवा में उड़ गए थे। तो बलराम ने बजाकर अपने भाई से कहा, भाई शुक्रिया, ये लो तुम्हारी बंसी, एक दिन के लिए कृष्ण बोला और ये परिणाम हुआ। तो भगवान को जाकर उनका वध करना पड़ा। इस प्रकार बलराम की अनेक लीलाएं हैं। बलराम जी एक राक्षस था, प्रलंबस हो रहा, ये भगवान अपने भक्तों के दोस्तों के साथ खेल रहे थे और उनकी शर्त ये थी कि जो हार जाएगा वो जो जो जीता है उसको अपने पीठ में उठाएगा। तो भगवान कृष्ण की सेना हार गई तो प्रलंबसुरा बलराम की सेना जीत गई। प्रलंबसुरा बलराम को अपने पीठ में बिठाकर बहुत दूर ले जा रहे थे। फिर उस राक्षस ने अपना रूप बदला, बड़ा होते गया। फिर बलराम ने बड़ी सरलता से उनका वध कर दिया। तो इस प्रकार बलराम ने भी दिव्य लीला प्रकट की। और थोड़े दिनों में आप क्या मनाने जाओगे? जन्माष्टमी, ठीक है, जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी के संबंध में हमें क्या करना चाहिए? तो जन्माष्टमी अभी आने वाले, कब है जन्माष्टमी? उसके अगले दिन क्या है? तो जन्माष्टमी के संबंध में हमें क्या करना चाहिए? भगवान की लीलाओं का ज्ञान करना चाहिए। भगवान पृथ्वी पर क्यों प्रकट होते हैं? भाई तनाया साधु नाम विनय दुष्कृतम धर्म संसपनाथाया। भगवान तो अजा है, अजा मतलब अनबॉर्न, जो कभी जन्म नहीं देते। तो भगवान अपनी इच्छा के अनुसार अपने आप को प्रकट करते हैं। भगवान क्यों प्रकट करते हैं पृथ्वी पर? धर्म के नियमों की स्थापना के लिए। धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी, और इसके अलावा सब अधर्म है। तो भगवान है आजा। भगवान जब प्रकट होते हैं अपने भक्तों को माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए वासुदेव और देवकी, इन्होंने 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए बड़ी गहरी तपस्या उठाई। हमारे पृथ्वी के 6 महीने देवताओं के 12 घंटे के बराबर हैं। तो 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए वासुदेव देवकी ने कुछ नहीं खाया। आप एक दिन की आदत ही पढ़ सकते हो, उस समय से बहुत चमत्कार कर दिया। 12,000 सेलेस्टियल ईयर्स, मतलब हजारों लाखों साल कुछ नहीं खाया। क्या खा रहे थे? केवल पत्ते जो पेड़ से गिरते हैं और ताजी हवा। आजकल तो ताजी हवा नहीं मिलती, कहां मिलती है, सब जगह बासी हवा है। सब पत्ते, आपको अगर ये खुराक दी जाए, पत्ते जो गिरते हैं आपके प्रसाद में, प्रसाद में आज लेक्चर के बाद तो आपको भंडारे की बजाय सूखे पत्ते दे देंगे, तो आप तो अगली बार आओगे नहीं मंदिर। हाँ, नहीं जाते वहां, मतलब सूखे पत्ते मिलते हैं। तो वासुदेव देवकी सूखे पत्ते खा रहे थे, उनके मन में एक ही विषय का चिंतन था कि हमें भगवान बेटे के रूप में प्राप्त हो। भगवान जब प्रकट हुए, अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए, चार हाथों के साथ, वो ये विश्वास दिलाना चाहते थे अपने माता पिता को कि मैं प्रकट हो चुका हूं, घबराओ मत। भगवान के प्रकट होने से पहले कौन प्रकट हुए? बालम से पहले छह भाई, जिनका वध किया जाए। छह भाई का सिंबॉलिक अर्थ है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। ये छह को अनर्थ माना जाता है और इन अनर्थ के कारण हम भगवान के शरणागत नहीं होते। तो अगर आप भगवान को हृदय में बिठाना चाहते हो, आप में से कितने भक्त हो जो भगवान को हृदय में बिठाना चाहते हो? ओ सब, ये शुद्ध भक्तों की सभा है। तो आप अगर भगवान को हृदय में बिठाना चाहते हो तो क्या चीज की आवश्यकता है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, इनका वध करो। आप इनके बिगड़ हम रहेंगे कैसे? अति सवाल तो इनके कारण ही है नहीं। तो इनको जब दूर करोगे, जब आपको भक्ति समझ आएगी, जब आप भगवान को समझ सकोगे, जब आप उनके शरणागत हो सकोगे, जब आप इन अनर्थ का विरोध करो। तो भगवान जब प्रकट होते हैं, देवीय लीला प्रकट करते हैं, किस लिए? भक्तों की प्रसन्नता के लिए। और ये जो दिव्य लीला है, इसे अद्भुत लीला भी कहा जाता है। आज के जमाने में बहुत से व्यक्ति ये कहते हैं हम भगवान के अवतार हैं ना। अगर आप भगवान के अवतारों का दर्शन लेना चाहो तो हरिद्वार ऋषिकेश में जाइए। हर आश्रम के सामने गुरु जी के नाम के साथ भगवान शब्द जुड़ा हुआ है। भगवान 101 श्रीपद, अनेक भगवान है। एक समय प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, किसी ने पूछा जर्नलिस्ट ने, आर यू गॉड? और प्रभुपाद ने उत्तर में क्या कहा? एनीवन हु सेज जीओडी गॉड इज, बोलते हैं शराबादी है, नियोजी डॉग। तो प्रभुपाद जी ने सारे विश्व में प्रचार किया, कृष्ण भक्ति की स्थापना की। क्षेत्र महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी आची नगर अधिकार सर्व प्रचार, पृथ्वी में जितने नगर गांव हैं सब जगह ये मेरा नाम पहुंचेगा। तो प्रभुपाद जी ने सारे विश्व में कृष्ण भक्ति की स्थापना की, पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। आप कोई भी किताब पढ़ लो, आप कहा ये नहीं देखो पढ़ोगे भक्तिवंदन स्वामी मूवमेंट, आप पढ़ोगे हरे कृष्ण मूवमेंट। प्रभुपाद जी ने हमेशा ये कहा हम भगवान के नित्य दास हैं। दास भी नहीं, दासों के दास। दास की भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो हमारा उद्देश्य क्या? दासों का दास बनना। तो परम भगवान प्रकट होते हैं पृथ्वी पर, अपनी दिव्य लीला प्रकट करने के लिए, जिसका नाम है कृष्णा कथा। कृष्णा कथा में हम रुचि लेंगे तो आध्यात्मिक परिवर्तन होगा। और जैसे कि आज के श्लोक में कहा गया है, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए मानव समाज के लिए कि हम कृष्णा कथा में रुचि लें। पर अफसोस की बात क्या है, कृष्णा कथा की बजाय हम किसमें रुचि लेते हैं? किसमें? किसमें? राम कथा। राम कथा प्रजल्पा प्रजल्पा करेंगे सुबह से रात तक, पर भगवान का नाम लेंगे? हम वॉक करने जाते हैं पार्क में, देखते हैं कई लोग चल रहे हैं, सुबह सुबह कप्पे मारे क्रिकेट खेल रहे हैं, और भगवान का नाम ले लेंगे। तो भगवान ने हमें जीभ दी है, कान दिए हैं। अभी जन्माष्टमी आ रही है कुछ दिनों में, तो हम जन्माष्टमी की तैयारी कैसे करेंगे? आप सबसे भेद एक तो जन्माष्टमी की तैयारी है, ये पांडा लग रहा है, हाँ वाटर प्रूफ, ये सब लाइट जलेगी, लाइट जुड़ेगी। पर ऐसी तैयारी है हमारी क्या, कि हम ये निर्णय करें कि हमें कृष्णा कथा में रुचि लेनी है, कृष्णा कथा में रुचि बढ़ानी है। और ये कैसे संभव होगा? शास्त्रों को पढ़कर। तो इन श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्न के उत्तर में ये स्थापित कर रहे हैं कि कृष्णा कथा ही एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके द्वारा आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो आप सब भक्तों का ये भाव होना चाहिए कि हमने कृष्ण कथा में रुचि बढ़ानी है। और ये कैसे बढ़ाओगे? शास्त्रों का अध्ययन करके। शास्त्रों को पढ़ोगे, भागवतम के 10वें स्कंध में भगवान के भगवान की बाल लीला और लीला का वर्णन है। तो फल भगवान आते हैं अलग अलग समय, किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए। और यही बालराम जी प्रकट हुए थे भगवान नित्यानंद के रूप में, किसके साथ? चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो जन्माष्टमी के अगले दिन क्या है? प्रभा जी का जन्मदिन। तो ये साल जैसे आप जानते हो एक बड़ा खास ऐतिहासिक साल है, क्योंकि आज से 50 साल पूर्व प्रभुपाद जी निकले थे भारत से अमेरिका के लिए। फरवरी 13 फ्राइडे 1965 सुबह के 9 बजे प्रभुपाद जी जलादूता जहाज में चले थे सेंट जॉर्ज पोर्ट से कलकत्ता से कहां तक? अमेरिका के लिए। श्री प्रभुपाद जी के पिता का नाम था गौरमोहन दे, बड़े धार्मिक भाव के थे, पर प्रभुपाद जी के शब्दों में मिडिल क्लास के थे, कोई ज्यादा धनी नहीं थे। और प्रभुपाद जी ने कहा हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। तो बकायदा संतों की वो सेवा करते थे अपने घर में, उनको निमंत्रण देते थे, भोजन खिलाते थे। और जब ये संत उनका आभार प्रकट करते थे तो कहते थे मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि वो राधा रानी जी का बड़ा प्रसिद्ध भक्त बने। छोटी आयु में ही प्रभुपाद जी रथ यात्रा की योजना करते थे। और 1922 में एक मित्र था प्रभुपाद जी का, जिसने प्रभुपाद से निवेदन किया, चलो मैं आपको एक संत से मुलाकात करवाना चाहता हूं। प्रभुपाद ने कहा मैं तो बहुत संतों को मिल चुका हूं, मैं किसी से प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि प्रभुपाद जी के घर में रोज कोई ना कोई संत आता था, मैं किसी से भी प्रभावित नहीं हुआ। इस मित्र ने कहा ये संत जूते जैसा नहीं है, ये खास असली संत है। प्रभा जी 1922 में भक्ति सिद्धांत जी को मिलने गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बड़े महान प्रचारक थे। उनके पिता भक्तिनाथ ठाकुर ने शुद्ध भक्ति की फिर से स्थापना की। क्षेत्रीय महाप्रभु जी के अप्रकट होने के पश्चात उनका सिद्धांत कल्त हाथों में आ गया था। ठाकुर भक्ति जी ने शुद्ध शिक्षा की स्थापना की और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी, कोई ऐसा बेटा भेजो प्रतिनिधि जो ये काम को आगे बढ़ा सके। तो उन्हें कहा जाता था रे और विष्णु, विष्णु की रे किरण, विष्णु की किरण। तो भक्ति सिद्धांत जी जब मिले प्रभुपाद जी को 1922 में, पहली मुलाकात में उन्होंने पहचान लिया ये है वो शुद्ध भक्त जो भगवान के संदेश को ले जाएगा पश्चिम देशों में। तो भक्ति सिद्धांत जी ने कहा तुम पढ़े लिखे युवक हो, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हो, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देशों में। भक्ति सिद्धांत जी ने कई सन्यासी भेजे थे जो बिना सफलता के भारत लौट आए। प्रभुपाद ने कहा हमारा देश इस वक्त गुलाम देश है, कौन सुनेगा हमारे संदेश को, पहले हमें हमारे देश को स्वतंत्र बनाने दो। उन दिन में अंग्रेजों का राज्य था। भक्ति सिद्धांत जी ने कहा असली स्वतंत्रता है जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा, राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं। तो ये भाव कि चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देशों में पहुंचाना है, ये बीज भक्ति सिद्धांत जी ने बो दिया था 1922 में। तो इसके पश्चात प्रभुपाद जी यही सोच रहे थे कैसे इस आदेश को पूरा किया जाए। उस वक्त प्रभुपाद जी व्यस्त आश्रम में थे और कई कारण थे कि वो नहीं कर पाए। 1932 में प्रभुपाद जी मिले थे भक्ति सिद्धांत जी से राधा कुंड में। भक्ति सिद्धांत जी उस समय हजारों को भक्तों को लेकर ब्रजमंडल परिक्रम कर रहे थे और प्रभुपाद जी जब मिले भक्ति सिद्धांत जी ने कहा अगर भगवान तुम्हें शक्ति दे सफलता दे तो ग्रंथों को प्रकाशित करना, अनुवाद करना और प्रकाशित करना। 1936 में भक्ति सिद्धांत जी अप्रकट हो गए थे। अप्रकट होने से पहले प्रभुपाद एक पत्र डाला था। प्रभुपाद ने कहा आपके इतने सन्यासी शिष्य हैं, वो इतनी सेवा कर रहे हैं, मैं कुछ सेवा नहीं कर रहा। हालांकि प्रभुपाद जी सेवा कर रहे थे, पर शुद्ध भक्त का भाव ये रहता है मैं कुछ नहीं कर रहा। तो भक्ति सिद्धांत जी उत्तर में कहा तुम पढ़े लिखे युवक हो, ले जाओ क्षेत्रीय महाप्रभु के संदेश को पश्चिम देश में। तो ये भाव था प्रभुपाद जी के मन में और प्रभुपाद जी प्रयास कर रहे थे कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए भारत में। उन्होंने एक संस्था बनाई थी लीग ऑफ डिवोटी झांसी में। वो जितनी सफलता प्राप्त हो रही चाहिए उतनी नहीं मिली। कल मैं अहमदाबाद में एक लेक्चर दे रहा था 5वें स्कंध के एक श्लोक पर, जिसमें कहा गया था कि सारे लोकों में सारे देशों में सबसे पवित्र स्थान है भारतवर्ष का, और जो व्यक्ति इस देश में जन्म ले वो बड़ा सौभाग्यशाली है, उसे अपना उद्धार करना चाहिए और दूसरों का भी। दूसरे शब्दों में हर भारतवासी का कर्तव्य बनता है कि वो अपना उद्धार भी करे, शास्त्र पर आधारित और दूसरों का भी उद्धार करे। पर हम क्या सोचते हैं, हमारा तो कर्तव्य है धन कमाओ, चाहे लूटो चोरी करो कुछ करो धन, है ना। तो प्रभुपाद जी काफी लंबी कथा मैं संक्षेप में कह रहा हूं। प्रभा जी के एक मित्र थे अग्रवाल, मथुरा में व्यापारी था, तो उसका एक बेटा था जो अमेरिका गया था पढ़ने के लिए। वो वहां जाकर एक अमेरिकन लड़की से सम रिश्ता हुआ, शादी कर ली, वहां सेटल हो गया। तो पिताजी उसके प्रभुपाद को शिकायत कर रहे थे, मेरा बेटा अमेरिका गया पढ़ने के लिए, वहां शादी कर ली, वहीं रुक गया। तो प्रभुपाद जी ने कहा अगर बेटा अमेरिका में है तो मुझे निमंत्रण दिला दो, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को प्रचारने के लिए। हम लोग तो अमेरिका जाना चाहते हैं घूमने के लिए ना, हॉलीवुड देखने के लिए। तो प्रभुपाद जी के मन में ये भाव नहीं था, उनके मन में एक ही भाव था, गुरु महाराज का ऑर्डर है, पूछाओ चैतन्य महाप्रभु से। तो 3 महीने के अंदर अग्रवाल जी ने अपने बेटे को लिखा था, प्रभुपाद जी को निमंत्रण आ गया इंडियन कॉन्सुलेट से, और फिर बड़ी मुश्किल से पासपोर्ट इत्यादि मिले, और फिर प्रश्न था कैसे जाएंगे प्रभुपाद अमेरिका, बाई प्लेन जाना तो बहुत महंगा था। कईयों से प्रभुपाद जी ने पूछा आप मदद करोगे मेरी टिकट लेने के लिए, सबने कहा ये तो बहुत महंगा है। वो इतने समय में प्रभुपाद जी ने श्रीमद भागवतम प्रथम स्कंद कलस्कंद 1, 2, 3 भाग प्रकाशित कर लिए थे। जब प्रभुपाद जी ने 3 भागों में पहले प्रथम स्कंद को प्रकाशित किया तो प्रभुपाद जी का हौसला और बढ़ गया। हाँ मेरे पास हथियार है युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए, अब युद्ध के मैदान में लड़ने जाओगे कुछ हथियार होने चाहिए। प्रभुपाद जी की किताबें छपी नहीं थी तो हथियार तैयार नहीं थे। प्रथम स्कंद प्रकाशित हुआ तो प्रभुपाद ने सोचा हमें पर हथियार है। फिर प्रभुपाद जी को किसी ने कहा कि एक धार्मिक औरत है जिसके पानी के जहाज चलते हैं, और प्रभुपाद जी पहले उसे मिल चुके थे भगवतम की छपाई के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए। तो प्रभुपाद जी जब मिले श्रीमती महाराज जी को कहा मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ चैतन्य महाप्रभु जी संदेश के प्रचार के लिए। प्रभुपाद की आयु लगभग 70 साल की थी। श्रीमती महाराज जी ने कहा आप अमेरिका इस उम्र में जाकर क्या करोगे स्वामी जी, कोई जान पहचान है नहीं, मर जाओगे वहां जाकर, 70 साल के हो रहे हो आप। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मेरे गुरु का आदेश है, मुझे जरूर जाना है। जब श्रीमती महाराज जी ने देखा कि प्रभुपाद में बड़ा दृढ़ भाव है जाने के लिए, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको टिकट दूंगी पर एक कार्गो जहाज में। आप लोग यात्रा करते हो गए भारत में, आप में किसी ने मालगाड़ी में यात्रा की है? नहीं नहीं, क्यों? बहुत स्लो जाती है ये कार्गो शेप, मतलब जहाज जो कि कार्गो उठाता है। मालगाड़ी होती है ना, मालगाड़ी पृथ्वी पर चलती है, कार्गो शेप पानी में चलता है, अंतर इतना ही है। आजकल तो जहाजों में बड़े लोग घूमने जाते हैं, उसमें टेनिस कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, बार है, बॉलरूम डांसिंग है। आपके भारतीय इंडियन लोग विदेश जाते हैं ये क्रूज करने के लिए, उसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रूज, लग्जरी लाइनर। और ये जो जलादूत जहाज जिसमें प्रभुपाद जी गए, पूरे जहाज में एक ही कैबिन था, कोई पैसेंजर नहीं, कुछ नहीं। और प्रभुपाद उस स्थिति में तैयार हो गए जाने के लिए, क्योंकि उनके मन में एक ही भाव था चैतन्य महाप्रभु जी संदेश को पहुंचाना है। और श्रीमद महाराज जी ने 500 रुपये दिए, उनके एक सेक्रेटरी थे जिनका नाम था चोकसी, स्वामी जी को गर्म कपड़े खरीद लो, तो गर्म कपड़े खरीद के दिए। और फिर फरवरी 13 को प्रभुपाद जी चले थे कलकत्ता से अमेरिका के लिए। 13वें दिन रास्ते में पहली रात से ही पानी में, आप में से कितने भक्तों ने पानी के जहाज में यात्रा की है? अच्छा, यू आर मैरीन, हमारे कमल होते वॉज मैरीन इंजीनियर, तो यू आर ऑल्सो मैरीन इंजीनियर आर्मी, तो कमल ओजर बहुत मैरीन इंजीनियर ही मैं रिमेम्बर। पानी के जहाज में सी सिकनेस बहुत आती है, लोगों को उल्टी आती है, तो प्रभुपाद जी का पहली रात से उल्टी आने लगी, क्योंकि सागर बड़ा रफ था, और सागर आप प्लेन में जाते हैं, प्लेन ऊपर नीचे जाता है, पानी के जहाज में और भी ज्यादा टर्मोइल होता है। प्रभुपाद जी ने सब कुछ सह लिया और 13वें दिन उन्हें हार्ट अटैक हुआ, दो हार्ट अटैक हुए। तो जब 13वें दिन दो हार्ट अटैक हुए, प्रभुपाद जी ने सोचा कि अब मेरी योजना सफल नहीं होगी, तो उसी अगले दिन रात को उन्हें सपना आया जिसमें भगवान अपने अवतारों के साथ एक नाव में बैठकर प्रभुपाद के जहाज को खींच रही थी वो नाव, और भगवान ने कहा घबराओ मत, तुम्हारी योजना सफल होगी। मेरे प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे, वो जो कैप्टन था, कैप्टन पांडे, उसका 30 साल का अनुभव था कैप्टन के रूप में, उसने कहा इतना शांत सागर, इंडियन ओशन मैंने कभी अनुभव नहीं किया, हर यात्रा में ये इंडियन ओशन अपना असली रूप दिखाता है। तो प्रभुपाद ने कहा ये भगवान कृष्ण की दया है कि अगर वो सागर अपना असली रूप दिखाता तो मैं जिंदा नहीं रहता। तो प्रभुपाद ने, भगवान ने सागर को बिल्कुल शांत बना दिया। तो इस प्रकार भी प्रभुपाद बॉस्टन में पहुंचे सितंबर 17 तारीख को, 32 दिन जहाज में थे, 35 दिन, और जब 15 तारीख को पहुंचे अमेरिका, तो कैप्टन पांडे उनको ले गया था बॉस्टन दिखाने के लिए। सितंबर 17 को बॉस्टन में बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें मेयर और गवर्नमेंट के बड़े अधिकारी आ रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने एक कविता लिखी जिसमें उन्होंने कहा हे भगवान, आप मुझे यहाँ ले आए हो, कौन सुनेगा आपके संदेश को, पर आपकी असीम कृपा हो तो हर कार्य संभव है। फिर प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क पहुंचे और आस्ते आस्ते उन्होंने पहला इस्कॉन केंद्र खोला 1966 में। तो ये साल हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं उस घटना की, जब प्रभुपाद जी चले थे कलकत्ता से कहां के लिए, और अगले साल हम मनाएंगे गोल्डन जुबली उस घटना का, क्योंकि प्रभुपाद जी ने पहला इस्कॉन के केंद्र की स्थापना की कहा अमेरिका में। तो ये साल हमारे भक्त सारे विश्व में प्रयास कर रहे हैं कोई ना कोई योजना करने के लिए, हम ये साल ये करेंगे वो करेंगे। तो आपके मेरा के भक्तों का क्या उद्देश्य है, ये सर हमने प्रभुपाद जी के चरणों में क्या अर्पण करना है, राधा के धारे का मंदिर, तो गिव मी इनविटेशन कार्ड, तो ओनली वन बाबा। तो आप सब जानते हो मंदिर का उद्घाटन कब होने वाला है, कब? 11 दिन नहीं बचे कि बहुत समय बच गया है, बचा है कि नहीं, अरे जवाब ही नहीं दे रहे, बहुत समय बचा है, अभी तो 24 महीने बच गए हैं, नहीं 24 दिन, महीने नहीं, अभी 24 दिन के लिए काम तो काफी बचा हुआ है। तो इस समय मंदिर को समाप्त करने के लिए आप भक्तों के सहयोग की आवश्यकता है, आप सारे भक्त तैयार हो सहयोग देने के लिए, सब अनेक रूपों में चाहिए, कई बार लोग कहते हैं जो लेना है ले लो पर पैसे मत मांगना। सांतों का क्या सिद्धांत है, सब कुछ मांगे या पैसा नहीं मांगे?
हाँ
भाई साहब क्या ख्याल है आपका, सब कुछ मांगे? अगर तो ये मंदिर को समाप्त करने के लिए और आपके इस मंदिर के उद्घाटन के उस समय हजार से ज्यादा भक्त आने हैं अलग अलग स्थानों से, तो जो हजार भक्त आएंगे उनको रहने का स्थान हमें देना चाहिए या नहीं, और प्रसाद देना चाहिए?
देना चाहिए।
तो सब चीज का खर्चा होता है ना? तो आप लोगों की कई क्षेत्रों में आवश्यकता है। एक तो वॉलंटियर चाहिए, वॉलंटियर मतलब कि जो भक्त तैयार है 3, 4, 5, 6 दिन सेवा करने के लिए। हम चाहते हैं कि जो बाहर से भक्त आए उन पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़े, वो कहें मीरा रोड जैसा मंदिर हमने देखा ही नहीं। वैसे तो आपका मंदिर काफी खूबसूरत दिख रहा है और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और इसके लिए मैं खास आभार प्रकट करना चाहता हूँ नित्यानंद माधव और द्वारकानाथ और हर्ष गोविंद और कमल लोचन और आप सब भक्त, आप सब के प्रयास से अगर द्वारकानाथ और नित्यानंद माधव आगे नहीं आते तो शायद हमें 2-3 साल और लग जाते। इनके आने से गाड़ी फास्ट ट्रैक में चलने लगेगी, समझ रहे ना, फास्ट ट्रैक। ये तो गाड़ी जरा मालगाड़ी जैसे चल रही थी पहले। नितिन कहा है नितिन माधव? पहले नित्यानंद माधव आए थे, am I right? पहले वो भगवान ने उनको भेजा, फिर उनके एकदम बाद भगवान ने द्वारकानाथ को भेज दिया। और द्वारकानाथ की हाई स्पीड है, उन्होंने कहा नहीं स्लो नहीं जाना, तेजी से जाना है। तो इन दो भक्तों के सहयोग से हर्ष गोविंद और कमल लोचन काम कर पाए, है ना। अगर इनका सहयोग नहीं रहता तो खैर, इन्होंने तो अपनी सेवा कर ली है, पर आप लोग भी सेवा करना चाहते हो या नहीं? कि बाद में ये कहेंगे इन्होंने सेवा की पर बाकी ने नहीं की। तो सबसे पहले जो भक्त आएंगे बाहर के स्थानों से उनका बड़े आदर के साथ स्वागत करना चाहिए, बड़े आदर के साथ उनकी देखभाल करनी चाहिए, है कि नहीं? आप सब यहाँ रहना उनकी सेवा में जुड़ने के लिए। पर इस वक्त थोड़ी बड़ी समस्या है धन की, लगभग 50 लाख तो खर्च हो जाएगा अतिथियों की देखभाल में, है ना। बाकी जैसे आप देखते हो काफी काम बच गया है। तो मैं आप भक्तों से विनती करना चाहता हूँ, वैसे तो आपने ये विनती कई बार सुन ली होगी, तो मैं तो हिचक रहा था कुछ बोलने से, क्योंकि मैंने कमल लोचन और हर्ष गोविंद को कहा, वो इंग्लिश में कहते हैं ब्रोकन रिकॉर्ड, कि कई बार हम सुन बैठे हैं ये। मैंने कहा एक बार फिर से सुना दें, आप बुरा तो नहीं मान रहे? पक्का? ठीक है। तो आप सबसे ये निवेदन करने आए हैं कि आप तो थोड़ा जुड़िए, थोड़ा सहयोग दीजिए, इस वक्त कई चीजों की आवश्यकता है, और अगर आप दे सकते तो बड़ी अच्छी बात है। भगवान को असल में ना आपकी जरूरत है ना हमारी जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है। भगवान हमें मौका देते हैं कि हम सेवा में जुड़े अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए। ये एक मौका है कि भगवान आपको दे रहे हैं सेवा में जुड़ने के लिए, और सेवा में हम जुड़ते हैं कई रूप से, तन से, मन से, धन से। ठाकुर भक्त जी एक प्रार्थना में कहते हैं, हे भगवान मेरी पत्नी मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरी संपत्ति, ये सब आपके हैं। ये होना चाहिए हमारा भाव। तो आप सबसे यही नहीं, आप सबका भार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपके प्रयास से ये मंदिर यहाँ तक पहुंचा है। कभी समाप्ति के लिए थोड़े और सहयोग की आवश्यकता है, तो आप सब जानते हो कितनी सेवा आप कर सकते हो। भगवान तो हर चीज के साक्षी है। आप मेरे से छुपा सकते हो, मैं आपसे छुपा सकता हूँ, तो भगवान से कोई छुपा सकता है? वो तो जो सेवा का मौका है उसका लाभ उठाइए। फिर बाद में आप कह सकोगे हमारे प्रयास और सहयोग से यह मंदिर बना है, है ना? तो यही था निवेदन। आप सब जुड़िए कृपा करके। अभी 24 दिन बच गए हैं। काउंट डाउन इंग्लिश में कहते हैं, काउंट डाउन शुरू हो गया है और भक्त बड़ी उम्मीद के साथ आ रहे हैं। आगे हवा फैल गई है इस्कॉन में कि मीरा रोड मंदिर बड़ा सुंदर है, ऐतिहासिक मंदिर है। तो आप सब इसमें जुड़िए और भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा। You tell them how you want them to help. I just covered the point. जो भक्त सहयोग देना चाहते हैं, खास करके धन के रूप में, वो कमल लोचन मानमाली और किसी भी प्रचारक से मिल सकते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
राम। मेरा चर्चा एक वक्त से हुई थी, उस वक्त ने मुझे पूछा, रोजी आप दो में सबको बोलते हो धन लाओ धन लाओ इकट्ठा करो, लेकिन हमारा जीवन का लक्ष्य है वास्तविक तार उसी, जैसे आपके श्लोक में है। तो उनको और एक श्लोक दिखाया भागवत के पहले स्कंध से, श्लोक में कहा गया है कि जब हम शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे तब वासुदेव के कथा के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। शुद्ध भक्त श्री प्रभुपाद जी है, वशिष्ठ है, महाराज जी है, जितना हम उनकी सेवा करेंगे, अस्तित्व मंदिर का निर्माण कार्य जो है अस्तित्व उनकी सेवा, प्रभुपाद जी की सेवा, इतना हमारा जो शक्ति है, सामर्थ्य है, बुद्धि है और शारीरिक ताकत है, पूरा लगा के जब तक हम भक्तों की सेवा नहीं करेंगे, मन जो है कृष्ण का नहीं रहेगा, निश्चित बात है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जी इतना बड़ा बड़ा कार्य करो, भजन करो। देखिए भजन करने के लिए मन कृष्ण के नाम में, कृष्ण की लीलाओं में लगना चाहिए। कब लगेगी? जब हम सेवा करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण और साथ साथ विशेष अनोखा मौका हमारे लिए। महाराज जी ने जिस प्रकार कहा कि काउंट डाउन शुरू हो गया है, केवल 25 दिन बाकी है और उनमें हमको बहुत सारा धन की आवश्यकता है और ये केवल आपके द्वारा ही पूरा हो सकता है। देखिए ब्रह्मचारी कितना 3-4 है, वो कितना हद तक कर पाएंगे? मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप घर घर जाइए। आज तक ये भारत में नास्तिक व्यक्ति भी मंदिर का उद्घाटन के समय कुछ ना कुछ देगा। ये भारत है।
अब रिसीव बुक्स है जिसके साथ ये जा सकते हैं।
काउंसलर अभी हमने एक बहुत सुंदर स्कीम है, आप सबको मालूम है कि 26 तारीख शाम को नए मंदिर में अभिषेक का कार्यक्रम रखा है। उसमें आप अनेक अनेक लोगों के पास जा सकते हैं और ये अभिषेक का जो कार्यक्रम है नए मंदिर में पहली बार अभिषेक का मौका मिलेगा लोगों को, उसमें आप सबको प्रेरणा दे सकते हैं। और जो अभिषेक का स्पॉन्सरशिप स्कीम है 31,000 रुपीज रखा है, वो उसमें आप जितना हो सके उतने लोगों को जोड़ सकते हैं। और दूसरा है 27 तारीख को सुबह मंदिर में हवन भी होगा, उस हवन में भाग ले सकते हैं और मंदिर में एक उचित स्थान में उनका नाम भी रहेगा। 1,00,000 रुपए का, 1,11,111 का स्कीम है। ये दो जो स्कीम है उसमें आप जितना हो सके उतना जोड़ डालें और लोगों को जोड़े, ये मेरा नम्र निवेदन है। और मैं आशा करता हूँ आप सब आज से कम जितने भी लोगों से मिलेंगे, आपको केवल एक ही बात कहना है कि मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, आप आइए श्रवण कीजिए। हमारे पास बहुत सारे इन्विटेशन कार्ड्स भी हैं और टेबल के पास बहुत सारे फॉर्म्स भी हैं, आप लेके जाइए आज। और ये देखिए, वादा करता हूं आप जितना अपना श्रम करेंगे, जितना अपना शक्ति है, सामर्थ्य है, भगवान के सेवा में लगाएंगे, भागवत रहेंगे अगले 25 दिन तक, उसका फल ये होगा, वासुदेव दतायाम थे जाता नैष्ठिकी रथी, जो आज का श्लोक महाराज जी ने किया। तो जिस प्रकार परीक्षित महाराज का नैष्ठिकी रथी थी, वासुदेव तथा की रथी, वो रथी एक उपहार के रूप में भगवान स्वयं देंगे।
एक चीज कहना चाहता हूँ, एक समय बॉम्बे में प्रभुपाद जी ने कहा, मैं इंग्लिश में कहूंगा कोई अनुवाद कर दे, वी आर प्रोफेशनल बेगर्स।
हिंदी में क्या? प्रभुपाद जी ने एक बार कहा कि हम
प्रोफेशनल बैगर्स,
व्यवसायिक
नहीं, हम लोग प्रोफेशनल भिखारी हैं, हमारा काम है भीख मांगना, पर भगवान के लिए। अपने लिए मांगोगे तो पाप है, भगवान के लिए मांगेंगे तो ठीक है, ये नहीं भूलना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण। तो सब मेहनत करोगे पक्का? मेरा आना बेकार में तो नहीं जाएगा, मैं पूछूंगा इनसे। ओके, हरे कृष्ण। पूरा प्रसाद चाहिए या पत्ते खाओगे? पत्ते ज्यादा सस्ते पड़ेंगे।
हमारे मंदिर के लिए एकत्र किए और नित्यानंद मंदिर के लिए बहुत सारा सहयोग किया।